نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 39 آیت نمبر 14 سے 22 سورة آل عمران. لیسن نمبر 39 آیت نمبر 14 to 22 سورت آل عمران. الحمدللہ لفظ ترجمہ ہم کر چکے, اب ہم تفسیر سے پہلے تھوڑا سا آج کے سبق کا انٹروڈکشن آپ کو دے دوں کہ آج کے سبق میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو آج ہمارے سامنے ہیں انسانی فطرت کی بات کی ہے. لکھ لیجئے فطرت کا تعارف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کے بعد انسان کی ضرورت کی کچھ چیزیں اس کے لیے رکھی اور ضرورت یہ تھی کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا بھی سیکھے. مثلا اگر اللہ تعالیٰ نے بہترین کھانے پیدا کیے تو کھانے والا بھی چاہیے تھا اور کھانے کی خواہش بھی چاہیے تھی. بالکل اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے ریشم کے کیڑے کو ہمارے لیے کپڑے بننے پہ لگا دیا تو پھر دلوں میں خواہش بھی تو ہونی چاہیے تھی نا کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے, کھائے, پہنے, اس کو استعمال کرے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت حسن پھیلا دیا تو جب وہ حسن پھیلا تو پھر دیکھنے والی آنکھ چاہیے تھی. تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی اس کے ساتھ ساتھ ہماری فطرت میں کچھ چیز ڈال دی کہ ہم اس کائنات سے فائدہ اٹھائیں. وقت میں پڑھیں گے ڈیٹیلز تو جب آج شروع ہوگی اس کے ساتھ ہوگی, لیکن آج کے سبق میں آپ کیا کیا پڑھنے والے ہیں اس شوق کو بھرنے کے لیے. پہلی چیز کیا ہے کہ ہم اس میں دیکھیں گے کہ انسانی فطرت کو کیسے مینج کریں. آج کے سبق میں ایک اس سوال کا جواب بہت خوبصورتی سے مل جائے گا ہم سب کو کہ دین کے ساتھ دنیا بھی رکھیں یا صرف دین رکھیں, اور دین کے ساتھ دنیا رکھنے کا کیا طریقہ کار ہے. بعض دفعہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ دین کے ساتھ گناہ رکھنے کو دنیا کہتے ہیں. پھر ایک اور چیز جو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہمارے ذہنوں میں بالکل کلیئر ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو, اور وہ کیا ہے کہ جب دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہو تو ہمارا جھکاؤ کس طرف ہونا چاہیے. گویا کہ شروع میں ہی تم اس دنیا کے تقاضوں کو پورا کرو لیکن ان میں کھو کے نہ رہ جاؤ. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تم اس دنیا میں آ کر کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے, اصل یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ کیا لے کر جاتے ہو. اور آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم جنتیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کا جو دیدار ملنے والا ہے اس کا تذکرہ بھی پڑھیں گے. پھر اگلی چیز جو اس سبق میں ہمارے سامنے آئے گی وہ کچھ کوالٹیز, کچھ خصوصیات اور خوبیاں جن کو پانا جنت کو پانے کے لیے لازمی ہے. پھر اس کے بعد آج کے سبق میں ایک بہت بڑی گواہی کا تذکرہ ہے, سب سے بڑی گواہی اور سب سے بڑے گواہ کا. وہ کون ہے؟ وہ آیت 18 میں ہم دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ہم آج کے سبق میں ایک موجود بھی کچھ لوگ علم, اور آج کے سبق میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب لوگ ہم سے دین کے نام پہ بحثیں کریں تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے, اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا اور دین پہنچانے والوں پہ تشدد کیا ان کا کیا انجام ہوا. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا خلاصہ. اب چلتے ہیں ہم آج کے سبق کی آیتوں پہ. آیت نمبر 14 سے انشاء اللہ تعالیٰ بات شروع ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زجنا للناس حب الشہوات. مزین کر دی گئی, خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے مرغوبات دنیا, یعنی دنیا کی وہ چیزیں بہت زیادہ مائل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی, اور ان چیزوں میں اور کیا ڈال دیا؟ मोहब्बत इन चीजों की डाली और साथ ही साथ क्या किया, वल कनातीर मुकंतरती, और सोने चांदी के ढेर। यानी सबसे पहली चीज क्या है, जुज्जिना लिन्नास हुब्बु शहवात, शहवात की मोहब्बत, मिनन निसाई औरतों में से, नंबर एक लिख लीजिएगा, वल बनीन और बेटे नंबर दो, वल कनातीर मुकंदरती मिन الذهب والفضة, और जमा किए हुए खजाने सोने के और चांदी के, ये इसकी भी गिनती कर लीजिए। फिर अगली चीज वल खैल मुसव्वमा, और निशान लगे हुए घोड़े, वल अनाम और माल मवेशी। कितनी चीजें हो गई, सिक्स चीजें हो गई, सिक्स थिंग्स, छह चीजें। इन चीजों का तस्करा करके फरमाया, ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी का सामान है। असल में ये दुनिया की जिंदगी की मता है, जिसको हम कहते हैं कि ये दुनिया की मता है, दुनिया का माल है। जबकि वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, लेकिन अल्लाह के पास है अच्छा ठिकाना। यानी ये तो सिर्फ दुनिया की छोटी छोटी चीजें थीं, असल चीज इसके बाद अल्लाह के पास है। जब ये बात बंदा सुनता है तो दिल में ख्याल आता है, अच्छा वो क्या है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई आपको एक सूट दे, आपके बहुत खूबसूरत है, फौरन आप पकड़ने लगे, वो क्या, ये तो कुछ भी नहीं, अभी एक और भी है, तो फिर आप फौरन छोड़ देंगे। आप कहेंगे अच्छा पहले मुझे वो दिखाओ। तो इंसान की तबीयत कहती है कि मुझे जल्दी से पता चले कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए क्या रखा है। तो फरमाया आयत नंबर 15, कुल अनबियुकुम बिखैर मिन ज़ालिकुम, इनसे कहिए क्या मैं बताऊं तुम्हें इन चीजों से बेहतर चीज कौन सी है। लेकिन एक शर्त है, और वो क्या, कि वो चीज सबको नहीं मिलेगी। दुनिया के साथ ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन आखरत की नेमतों का तज़किरा आया तो कहा लिल्लज़ीना तक़ऊ, उन लोगों के लिए जिन्होंने तकवा की जिंदगी बसर की। बचते बचाते जिंदगी पर गुजारी, जिनका हाल क्या था, क्या है वो, जन्नातुन, जन्नते, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं। कितने दिन के लिए मिलेगी, खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले उसमें। और क्या, सिर्फ जन्नत, यानी घर मिल जाएगा खूबसूरत का, नहीं, उस घर को क्या करना है जिसमें घर वाला ना हो और घर वाली ना हो। तो इसलिए फरमाया वह अज़वाजुम मुतहरतुन, और पाक जोड़े, मर्दों के लिए बीवियां और बीवियों के लिए मर्द, बस ये कुछ होगा, मियां बीवी राजी तो खत्म नहीं। व रिदवानुम मिनल्लाह, और अल्लाह की रज़ा, रज़ामंदी सबसे बढ़ के, अल्लाह की खुशनूदी सबसे बढ़ के होगी। शब में खो के न रह जा कि तेरे ज़मानों मकां और भी हैं। जब ऊपर नजर की तो कहा क्या है, कहा बड़ा खूबसूरत है, किसने बनाया, किधर है, अल्लाह के पास है। किनको मिलेगा, जिन्होंने जिंदगी में डरते हुए जिंदगी गुजारी, क्या मिलेगा, जन्नत मिलेगी, वो जन्नतें जिनमें नहरें बहती होंगी। और कितनी देर वहां रहेंगे, कितने दिन का पैकेज है, तो फरमा या कुछ और भी कर सकते हैं, हाँ, तो कहा नहीं, तुम्हें अपने जोड़ों के साथ, अपने कपल के साथ वहां ले जाया जाएगा। और किस तरह से? बीवी और मियाँ, लेकिन शौहर और बीवी साथ जब होंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? कि वो अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे, बल्कि रिदवानो मिन अल्लाह, अल्लाह की रजा सबसे बढ़ के, कि जब अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी खुश और अल्लाह भी उससे खुश, और अल्लाह की रजामंदी मिल जाएगी जिसको, उसको और क्या चाहिए। लेकिन सवाल पैदा होता है कि क्या कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको बंदा अपने अंदर लाए तो फिर ये मिलेंगी, जिसको आप कह लीजिए कि इस डील की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। कोई भी होटल पैकेज कुछ भी आता है, अब यहां भी आपने 1 2 3 करना है, और आप देखेंगे हर चीज बराबर पे पड़ेगी जो पीछे 6 चीजें गिन ली आपने। अल्लज़ीन यकुलूना, जो ये कहते हैं, रब्बना इन्ना आमन्ना, ए परवरदिगार हम ईमान ले आए। पहली शर्त ईमान। किसको मिलेंगी जन्नत की नेमतें? जो ईमान का इजहार करते हैं, जुबान से कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो ईमान फिर उनके दिल के अंदर घुस के उनके जिस्म के एक एक अंग पे आ जाता है। सारी नेकियां करने के बावजूद आजीज इतने हैं कि फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, दूसरी उनकी ख्वाहिश अस्तग़फ़ार मांगना, ए अल्लाह हमें माफ कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, और वकीना अज़ाब अन्नार, हमें आग के अजाब से बचा ले। यानी इन लोगों की दुआएं बख्शिश की होती हैं और अजाबे जहन्नम से बचने की होती हैं। और अमल में इनको लाना क्या पड़ता है? आयत 17, असाबरीन, सबर करने वाले नंबर एक, वसादिकीन, सबर करने के बाद सच्चे लोग, रास्तबाज, खरे लोग, खोटे लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। तीसरी सिफत वलकानितीन, फरमा बरदार, कनूत, कनूत में दवाम भी है और आजजी भी है, यानी एवर लास्टिंग और हम्बलनेस। ये नहीं कि जब दिल चाह तो बहुत नेकियां कर ली और जब दिल ना चाह तो ना किया, खुशियां आई तो नेकियां छोड़ दी, गम आए तो मसल्ले भी पकड़ लिए, तस्बीहां भी ले ली। नहीं, कानित, और नेकियां करके नखरे नहीं करते, रोब नहीं डालते, है कि इनसे ज्यादा बड़ा कोई गुनहगारी कोई नहीं है। अगली सिफत वल मुनफिकीन, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, खर्च करते, स्पेंडिंग, किस रास्ते में? अल्लाह के अपने रास्तों में, अल्लाह के रास्ते में इन्फाक फी सबीलिल्लाह करने वाले। और अगली सिफत वलमुस्तग़फ़िरीन बिल असहार, और सहरियों के वक्त बख्शिश तलब करने वाले, स्मॉल आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह के वक्त 5 नमाजें अलग, ये इनकी रातों की इबादत है। तिहाई हिस्सा जब गुजर जाता है, सहरी का वक्त शुरू होता है, तो फिर उस वक्त ये पुकारते हैं कि अल्लाह हमें माफ कर दे, क्योंकि इनको पता है कि जब रात का आखिरी हिस्सा शुरू होता है तो अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पे नजूल फरमाते हैं और कहते हैं हल मिन साइलिन योता, कोई सवाली है जिसको दिया जाए? हल मिन दाइन युस्तजाबु लहू, कोई है पुकारने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए? हल मिन मुस्तगफिरिन युगफर लहू, है कोई बख्शिश तलब करने वाला जिसको बख्श दिया जाए? वो जिसको कहते हैं ना कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह तो अहम, अल्लाह ताला तो बंदे के ऊपर अहम करना चाहता है लेकिन बंदा नहीं करता। यहां पे बात पूरी हुई। इन आयात में अल्लाह सुबहाना ताला ने इस दुनिया में जीने का ढंग बता दिया कि दुनिया की जितनी चीजें हैं अल्लाह सुबहाना ताला ने दी, और अल्लाह ने ही इनकी मोहब्बत डाली। अगर आप देखें ना जुजीना लफ्ज को देखें तो जुजीना का लड़ना किसी चीज का महबूबे खातिर होना, नजरों में खुबना, जैसे कोई चीज बड़ी खूबसूरत लगती है ना, और जीनत जिसको आज दुनिया में ब्यूटी कहते हैं ना, ये दो तरह की होती है। एक होती है जाहरी जीनत, मादी जीनत, सबब जाहिर, यानी किसी चीज को आप खूबसूरत लग कर समझते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपको खूबसूरत लगती है। बच्चा खूबसूरत है, सबको प्यारा लगेगा। घर खूबसूरत है, सबको प्यारा लगेगा। किसी के कपड़े प्यारे हैं, सबको प्यारे लगेंगे। तो एक जाहरी जीनत होती है जिसकी वजह से दुनिया में लोग मोहब्बतें करते हैं। सूरत अल मुल्क में अल्लाह सुब्हान तआला पहली ही आयतों में फरमाते हैं, ज़य्यन्नस समा दुनिया बिमसाबी। तो यहाँ जीनत का लफ्ज मादी जीनत से मुराद है कि रात के अंधेरे में जब सिल्वर सितारे टिके हुए देखो तो सबको खूबसूरत लगते हैं। एक दूसरा सबब होता है जीनत का, और वो एतिकाद के साथ होता है, एतिकादी जीनत। सूरत हुजरात में आता है, हब्बब इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत डाल दी है। इसको आप यूं समझें कि माँ को अपना बच्चा प्यारा ही लगता है, चाहे काला हो, चाहे नाक बहती हो। वो खूबसूरती मादी नहीं है बल्कि एतिकाद है माँ का, यानी दिल की मोजीनत, दिल की वजह। तो जिससे मोहब्बत होती है वो प्यारा लगता है, और जिसको प्यार से देखे वो हकीकत में प्यारा लगता है। तो गोया कि अल्लाह सुबहाना ताला ने इंसान के दिल में मोहब्बत डाली। यहाँ एक छोटा सा बारीक सा नुकता है, अगर आप गौर करेंगे तो दिखेगा। लफ्ज क्या है? जुयिना लिन्नासी हुब्बु शहवात। अगर आप इसका तफसीर तर्जमा करें ना, तो जाहिर जो इसका हम तर्जमा करते हैं ना उससे थोड़ा सा फर्क है। इसकी मोहब्बत शहवात की नहीं, हुब्बु शहवात यानी चीजों की मोहब्बत नहीं, चीजों की मोहब्बत की मोहब्बत डाल दी। अब ये आप कहेंगे ये क्या फर्क है इसमें, तो आप देखिए, एक होता है चीज की मोहब्बत, मसलन एक चीज आपकी है, आपको उससे मोहब्बत है, आपका सेलफोन है आपको मोहब्बत है, आपकी गाड़ी है आपको उससे मोहब्बत है, क्योंकि वो आपको मस्जिद में ले जाती है, वो आपको दुनिया के काम करने पे ले जाती है। ठीक है, अगर ये मतलब होगा ना, तो मतलब ये क्या मानी हुआ कि जुयिना लिन्नासी शहवात, आपको अपनी मोहब्बत ही से मोहब्बत है। लेकिन एक मोहब्बत वो होती है हर रात चीज चलती चीज को इंसान देखता है। कोई गाड़ी देखे, जरा बच्चों को देखा करें, कैसे गाड़ियों खिड़कियों में खड़े हुए, वो गाड़ी मेरी जा रही है, ये तुम्हारी जा रही है। लड़कों को बहुत ही शौक होता है, चीज बंदे की अपनी हो कि ना हो, बस उसको चीज की मोहब्बत से मोहब्बत है। एक बीवी आ भी जाती है दूसरी बीवी के ख्वाब, फिर भी मर्द देखते हैं, औरतें नहीं देखती दूसरे मर्द के ख्वाब। कभी आपने सुना किसी औरत को मजाक में भी कहे? नामुमकिन है, औरत की फितरत में नहीं। मर्द हर वक्त ही जो बहुत ही जरा सतही तौर पे बातें करने लेते हैं, वो हर वक्त बीवी को दूसरी बीवी की धमकी देते हैं ना। हाँ? तो बीवी है लेकिन दूसरी भी अच्छी लगती है, अपनी बीवी भी है फिर भी दूसरी औरत पे नजर उठती है, अपनी जोड़ा है औरत के पास, औरतों की भी बात कर लेना, अपना जोड़ा है फिर भी दूसरा अच्छा लगता है। ये नहीं कहते कि पूरी हो गई चीजें, बस काफी और जरूरत ही नहीं रही। हाँ, ऐसा नहीं होता ना। तो गोया के हर राह चलती चीज को देकर हसरतें भरना, अपनी हो ना हो, बस चीजों की मोहब्बत। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे कुछ लोगों को शॉपिंग का क्रेज होता है, कुछ लोग बाजार में जाते हैं जरूरत के लिए। चमचा नहीं होगा तो मैं चावल कैसे बनाऊंगी, ये तो है जरूरत, ये तो है जरूरत। लेकिन कुछ को क्रेव होता है, लो देखो नया चमचा कौन सा है, नई प्लेट कौन सी है, चलो देखो, ऐसे देखते हैं सेल पे क्या है। यहां ये बातें हुब्बु शहवात कि कुछ को मजा आता है, और कभी वल्लाह ही आके देखते भी नहीं, लिफाफ से खोलते। कुछ को खरीदने का बहुत शौक होता है, पहनने का शौक नहीं होता। मैं ऐसी सिस्टर्स को जानती हूँ, कपड़ों पे कपड़े बनाती रहती हैं, अलमारियों से निकालने को दिल नहीं करता, सजा के तय करके फिर प्लास्टिक की थैलियों में, फिर मलमल के कपड़ों में रखा हुआ, भाई पहन लो नहीं खराब हो जाएगा। तो क्या करना है आपने इसको? आप देखिए कई लोग जो है ना, वो बजाय इसके कि ये कपड़े हमारी खिदमत करें, हम उनकी खिदमत करते रहते हैं, धो रहे हैं, सजा रहे हैं, उसको कलफ लगा रहे हैं, कहीं कुछ करते हैं कहीं कुछ करते हैं। नतीजा क्या होता है कि दिल दिमाग, एक शेर भी है ना, वो एक उर्दू में भी है बल्कि, कि इलाही मुझसे जुदा ना हो उल्फते लैला, यानी लैला नहीं चाहिए मुझे, लैला की उल्फत चाहिए, बस मुझे उससे मोहब्बत करना अच्छा लगता है। लैला हो ना हो वो तो पास ही, लेकिन उसकी मोहब्बत चाहिए। तो याद रखिए कि अल्लाह सुबहाना ताला ने ये मोहब्बतें खुद डाली हैं। अब थोड़ी सी संजीदा बात करते हैं, फिर इसके बाद थोड़ी गैर संजीदा बातें भी करेंगे इंशाल्लाह। और वो क्या है कि पहला सवाल आपके भी जहनों में आना चाहिए कि ये मोहब्बत किसने डाली। अगर आप देखिए लफ्ज़ ज़ुलशिना मजहूल है, आप इंग्लिश में कहेंगे तो ये पैसिव वॉइस है, इसमें ये नहीं पता चल रहा किसने डाली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये है किसने डाली है, अल्लाह ने डाली है कि शैतान ने डाली है, सवाल पैदा होता है। तो यहां समझ लीजिएगा छोटा सा एक नजरिया पहले ही समझ ले कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इंसानी फितरत में इन चीजों की मोहब्बत डाली है। तो साथ ही फिर अगला सुनते हैं तो जवाब मिलते हैं। तो पांच चीजें नोट करेंगे हम सब। सबसे पहली बात ये कि अल्लाह ने ये इसलिए डाली कि दुनिया का निजाम चले। आप मुझे ये बताइए कि अगर बाप के दिल में बच्चों की मोहब्बत ना होती, बीवी की, घर की, खाने की, पानी की, तो सुबह 7 बजे उठ के सर्दी में जाते काम पे? नहीं जाते ना। अगर बीवियों के दिल में मोहब्बत ना होती बच्चों की, तो क्या सुबह उठ के उनके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करती? नहीं करती। सबसे बड़ी चीज यह है कि अल्लाह ने दुनिया की मोहब्बत इसलिए डाली कि दुनिया का निजाम चलता रहे। अल्लाह ने इस दुनिया को क्यामत तक आबाद रखना है, इसकी रौनकों को बहाल रखना है। मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे के लिए कशिश डाली तो औलाद पैदा होगी, औलाद आ जाती है तो औलाद की मोहब्बत बढ़ती है, बच्चे हुए दुनिया की आबादी में इजाफा हुआ, दुनिया का काम चलता रहा। अगर दौलत की तलब ना हो तो इंसान मेहनत मशक्कत करेगा। कुछ लोग होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको फिक्र ही नहीं, गर्मी सर्दी कपड़ों से बेनियाज होते हैं। अल्लाह ताला ने डाली, ठीक है। पहली वजह क्या है कि इंसान दुनिया का काम करे। जो जरूरत की चीज है ना वो क्या है कि इन तकाजों को दबा कर रखा जाए और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की शरीयत को इसके ऊपर रखा जाए। डाली अल्लाह ने है, लेकिन कहा गया कि इसको कंट्रोल में रखो। बिल्कुल ऐसे है कि आपके हाथ में स्टेयरिंग दे दिया गाड़ी का, लेकिन साथ आपको ब्रेक भी दिया और साथ आपको हैंड ब्रेक भी दिया। अल्लाह सुबहान तआला ये नहीं चाहते कि हम राहब बन जाएं, रहबानियत में चले जाएं, ना खाएं ना पिएं ना हंसे ना बोलें और कहें जी कि हम बहुत नेक हैं। आज हमारे यहां तकवा का एक बड़ा जाली किस्म का मेयार रास्ता बोलता देख ले तो लोग उसके दीन मस्कीन गरीब मंगता दीन चाहिए, हमें मांगने वाले लोग चाहिए, सुस्त चाहिए। मुझे इस सिस्टमना की एक बात बड़ी अच्छी लगी, जब फर्स्ट टाइम से इनकी मुलाकात हुई ना तो उस दिन ऐसी बातें चीत चल रही थी, तो मैंने जिक्र पहले भी शायद किया, तो कहने लगी कि आप और तो सिस्टर्स ने तो बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और हमारे तो जहनों में ये कुछ है कि मुसलमान इस तरह के होते हैं दिस एंड दैट। तो उसमें उन्होंने अपनी फीलिंग दी जिसको मैंने बहुत ज्यादा ट्रू फील किया। कहती भाजी मैं पता क्यों मेकअप करती हूँ, मैं कपड़े अच्छे पहनती हूँ, जब मैं अच्छे कपड़े पहनती पहनती हूँ ना तो मुझे लगता है मैं फिट फटाट हूँ, अब मैं काम कर सकती हूँ। और अगर सुबह उठ के मैं मुंह धो के मेकअप करके अच्छे कपड़े ना पहनू ना तो मुझे सारा दिन सुस्ती लगती है। बात उन्होंने किसी और तरह से की होगी, जरा मेरे बताने में फर्क, लेकिन बात बहुत सच की उन्होंने। आप देखिए जिस दिन आप कहीं नहीं जाते बिलफर्ज आ रही है तो आप जरा उठ के कंघी करें, मुंह धोए, जरा साफ सुथरे हो, कभी घर में भी तैयार होके बैठे, आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि आप मैं सारे काम कर सकती हूँ। होता कि नहीं होता? फ्रेश अप होना और चीज है, तसन्नो बिल्कुल और चीज है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने ना पहनने से रोका ना ओढ़ने से रोका। कुछ लोग माशाल्लाह खुद भी सजे संवरे रहते हैं, काम भी सारे कर आते हैं, और कुछ हम जैसे सुस्ती के मारे हुए ना काम करते हैं ना चीजें ना अपने आप को साफ करते हैं, फर्क है ना। तो याद रखिए कि अल्लाह ने रखा लेकिन कहा कि इसको जहां ब्रेक आ जाए वहीं रुक जाओ, पहनो ओढ़ो खाओ पियो, जहां फितरत के तकाजे से टकराए, शरीयत के तकाजे से टकराए। मतलब आप तैयार होते रह गए, नमाज चली गई, आप कहते हैं चूंकि मैंने वजू करना नहीं करना इसलिए कि मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो अल्लाह टेम, अब ठीक है, अटक, मैं मुझे समझ नहीं थी आपकी बात, सेम ही बात है, लेकिन बाद में कर लेंगे अगर जरूरत हुई तो। अब होता क्या है कि जब एक बंदा इन चीजों के अंदर पड़ता है ना, तो फिर कंट्रोल जब खो देता है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही कि फिर गाड़ी कहीं तो कहीं जाएगी। तो ना तो इस्लाम में रहबानियत है, दो लफ्ज लिख लीजिए, एक होती है नफ्स खुशी, जिसको आप क्या कह सकते हैं, सेल्फ इनहिलिएशन, खत्म ही कर दो, ये नहीं है इस्लाम, कहता है सेल्फ कंट्रोल करो। दो लफ्ज लिख लेना, नफ्स खुशी और नफ्स को टेम करना। इस्लाम चाहता है कि सेल्फ कंट्रोल करो, कुछ रखो कुछ ना करो। एक है सेल्फ इनहिलिएशन, नफ्स खुशी जिसको कहते हैं, ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ये तो रहबानियत हो गई, जिसको इंग्लिश शायद हिंदी जुबान में निर्वाणा कहते हैं या कुछ और, ख्वाहिशों का खत्म होना, की तो जी कोई ख्वाहिश ही नहीं। तो बनना ही नहीं। एक सिस्टर थी, तो वो अपने हस्बैंड की बात कर रही थी, ना ना मना करते हैं ना हाँ करते हैं। जहां अल्लाह के दीन मुंह जोर हो जाए, तो वही ताकतवर घोड़ा जो है वो काबू में करना क्या है कि नफ्स के घोड़े को हमने बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है, दुनिया की पूरी होती रहे इसको करना है, ठीक है। दूसरी वजह कि अल्लाह सुबहान तआला ने ये मोहब्बत हमारे दिलों में क्यों डाली, ताकि आखरत की नेमतों का जायका चखाए। देखिए, अगर हमें खाने की कोई मोहब्बत ही ना होती, तो कैसे जन्नत के खानों के तस्वीर। जितनी भी चीजें आप देखिए कि अगर हम इनको जानते ही ना, हमारे दिल में इसकी कोई तड़प ना होती, कोई तलब ना होती, तो क्या हम इस तरह से कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा ऐसी ही चीजों में अल्लाह ने डाल के हमें कहा कि जरा आखरत में चखो। सूरत सजदा में हम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने पीछे तذکرہ करके फरमाया, फला तालम नफ्स मा उख्फिया लहु मिन कुर्रति आयुन, कोई नफ्स नहीं जानता कि उसकी आंखों की ठंडक का अल्लाह ने क्या सामान तैयार किया। तो लिहाजा चखाया, आज सिर्फ हम चख रहे हैं, आप नहीं है, ये हमारे भाई बहन, हमारे असली भाई बहन नहीं है, ये सिर्फ चिखाए ये रिश्ते, कि माँ का रिश्ता क्या होता है, बाप का क्या होता है, बच्चों का क्या होता है, भाई बहन का क्या होता है, क्यों असल रिश्ते कल जन्नत में मिलने हैं। हाँ, आप घबराए ना, आपके चेहरों पे जो हवाइयां उड़ी हैं उसकी जवाब दे दूं, यही बन जाएंगे आपके जब दोनों सेम रास्ते पे चलेंगे। अलहक नबीहिम जुर्रियतिहिम, हम उनके औलादों को उनसे मिला देंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता, अल्लाह कभी ना करे, हमारे बच्चे अगर जन्नत में चले गए और हम रह गए, और हम चले गए तो वो रह गए, तो उनकी मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी। किसी को वहां अपना कोई ना हंजार बच्चा याद नहीं आएगा कि फला चला गया दुनिया से। अगर आप वो सीरीज सुन चुके हैं, कहानी की किताब है, जो जब जिंदगी शुरू होगी तो उसमें पूरी स्टोरीज है, मैं बोलती हूँ तो मुझे सब वो बोले हुए अपने लफ्ज याद आ जाते हैं। वो स्टोरिकली पूरी, एक बच्चा है कि एक बाप है जिसका एक बच्चा अच्छा था एक बुरा था, बेटी जरा दोस्तों में खराबियों में पड़ी हुई थी, तो वो उनका फिर सारा इंजाम मैदान मख्शर में घूम फिर के देखता है, हर बच्चे पे एक एक कहानी है। तो पढ़ते हुए मैं भी पढ़ाती थी, तो हम समझते थे हम वहीं पहुंचे हुए हैं, स्टोरीज है बस सुनने वाली है। तो आप कभी सुनना चाहें तो उसका लिंक बल्कि डाल दें आप लोग उसके ऊपर ब्लॉग पे, बिल्कुल बच्चों को भी मजा आता है उसमें। तो उसमें होता क्या है कि जब अगर हमारा कोई रिश्तेदार अगर वो जन्नत में ना जा सका, तो हमारे दिल से उसकी मोहब्बत निकल जाएगी, अल्लाह उसकी जगह कोई दूसरा दे देगा। शौहर बीवी दुनिया में साथ है, लड़े भिड़े खुश रहे अच्छे हैं बातें नेक है, दुनिया में साथ है, जन्नत में जाके कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी कि वही मिले जो खराब भी थे लेकिन रह रही थी साथ, अल्लाह नया शोहर दे देगा। इस तरह जो बीवियां कदरदान नहीं है नेक शोहरों के, اللہ ان سے مردوں کو بے نیاز کر کے ان کو نئی بیویاں دے دے گا. تو لہذا چکھایا, صرف یہاں ٹیسٹ کرو کہ باقی رہنے والی نیکیاں ہوں گی تو بات بنے گی. تو آزمائش ہے, بہت بڑی آزمائش ہے کہ تم بیلنس کیسے کرتے ہو. نافرمانی کی بات قبول کر لیتے ہو یہ سوچ کے کہ شوہر ہے, نہ کی تو گھر ٹوٹ جائے گا. ادھر گھر چھوٹ رہا ہے, ادھر جنت چھوٹ رہی ہے. ادھر آپ اپنی بیگم کی خواہش پوری کرنے کے لیے حرام میں پڑ گئے کہ بیگم ناراض ہو گئی تو کیا ہوگا, لیکن ادھر جنت کی حوریں آپ سے روٹ جائیں گی. فرق ہے نا؟ تو یہ امتحان ہے. چوتھی چیز, شکر گزار بنانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم تھینکفل ہوں. نعمتیں نہ ملتی تو شکر کرنا کیسے آتا؟ دیکھیے, جب آپ پیاس میں پانی کا گلاس پیتے ہیں, خاص طور پہ افطاری کے وقت, تو پتہ چلتا ہے نا پانی کیا قدر آتی ہے نا. اور جب اتنے مہینوں سالوں کے بعد کسی بچھڑے کے گلے جا کے لگتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا. تو شکر گزار بناتا ہے اللہ ہمیں. تمہیں شکر کرنا ہے. اور یقین کر, بھی آتا ہے نا دکھ, تو کبھی آتے ہیں نا. ستاتا تو میں کوئی کبھی ہے, لڑائی تو میاں بیوی میں کبھی ہوتی ہے. اور اللہ نہ کرے غور, جن کی ہوتی ہے اللہ ان کی ختم کروا دے. لیکن عام حالات میں تو ہم نعمتوں میں ہی ہوتے ہیں, ہر وقت بڑی نعمت نہیں ہے, دس اینڈ دیٹ. تو اللہ تعالیٰ میں شکر گزار بنانا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے بات, آخری بات جو اصل میں تھیم ہے, اور وہ کیا ہے کہ یہ نعمتیں کرنسی ہیں. دنیا میں ان نعمتوں کو کرنسی بنا کر آخرت کی چیزیں خریدو. اللہ ہمیں یہ سب کچھ دیتا ہے کہ تم اس سے آخرت خریدو. ان مال, اولاد, بچوں, بیوی, گھر, گھوڑے, گاڑیوں کو اللہ کے راستوں میں لگا دو. بیگم چاہیے کہ نہیں, بچے چاہیے کہ نہیں, مال بردار چاہیے نا. تو یہاں سے اپنے ہاتھوں سے ان کو دیتے رہو, پھر تم دیکھو گے کہ تمہیں وہاں جا کے یہ سب کچھ مل جائے گا. تو گویا کہ یہ محبت جائز ہے, فطری ہے, جب حد سے آگے نہ جائے. شرط کیا ہے کہ اس کے اندر آپ تو بیلنس رکھ لیں. اب آئیے ذرا نعمتوں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں, اور پھر اس پہ شکر کرنا سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان نعمتوں کو لیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں. پہلی چیز آپ دیکھیے کہ جو چیزوں کا تذکرہ ہوا, تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ زین للناس حب النساء, عورتوں کی محبت. حب الشہواتی من النساء, عورت. اور حقیقت ہے کہ یہاں عورت سے مراد دو طرح سے آپ لیں گے. اگر آپ نساء کا لفظ لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ عربی زبان میں بھی اور اردو میں بھی عورت کس کے لیے آتا ہے؟ ایک تو وومن کے لیے آتا ہے, وومین جس کو انگلش میں کہتے ہیں, اور ایک گاؤں کے لوگ خاص طور پہ اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی عورت, اس کا مرد. عورت بیوی کے لیے بھی آتا ہے اور عورت عورت کے لیے بھی آتا ہے. پہلی چیز یہاں رکھی کہ اور مردوں کے دل میں عورتوں کی محبت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ محبت کیسی ہے؟ ایک مومن کے دل میں جو محبت ہے نا, یہ بیوی کی ہے. اور ایک عام مرد کے دل میں محبت عورت کی ہے. فطرت کے اعتبار سے مرد عورت میں کشش ہے, اس میں کوئی شک نہیں. عورت بھی محسوس کرتی ہے, لیکن عورتیں فطرت پہ اگر ہو نا, زندہ عورتیں ہوں, ان کی عورت پنا زندہ ہو, تو عورتیں مردوں میں اٹریکشن نہیں لیتی. وہ نہیں ان کو میسیجز کرتی کہ آؤ آئی لو یو, اور آؤ میرے ساتھ بھی کچھ وقت گزارو. فطرت کے اعتبار سے عورت تو اپنے مرد کو بھی کبھی پہل نہیں کرتی, لیکن کہاں غیر مردوں کو جا کے میسیجز دینے. لیکن دکھ کی بات اور ظلم کی بات ہے کہ آج جو سٹائل آف لیونگ ہے اس میں مرد نہیں لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہوتے, عورتیں بھی, لڑکیاں بھی مردوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. تو لہٰذا فطری طور پہ अपोजिट सेक्स की वजह से अट्रैक्शन तो है, लेकिन ईमान वाला मर्द अपने दिल में किसी लड़की की अगर मोहब्बत महसूस करे, पहली बात है ये फितरी है, मैरिड हो कि अनमैरिड हो, औरत हो या मर्द हो, किसी अपोजिट सेक्स के किसी दूसरे पर्सन को देकर दिल में ये ख्याल आना कि ये अच्छा है या ये अच्छी है या इससे मेरी शादी हो सकती है या इससे मेरी शादी हो जाए, इसमें कोई गुनाह नहीं है। गुना का सिलसिला इससे आगे शुरू होता है। मर्द है जिसको शादी अभी करनी है, मुआशरा है, दुनिया है, बाज दफा लड़कियां देखी भी नहीं होती, किसी की जुबान से किसी की बेटी का तस्करा सुना होता है, माँ बहन ही बताती रहती है फलां की बेटी बड़ी अच्छी है, बड़ी नेक है, वो कुरान पढ़ती है, वो ऐसी है, तो मर्द के दिल में आ जाता है कि ठीक है अगर ऐसी है तो मेरी शादी उससे हो सकती है, नो प्रॉब्लम। सवाल पैदा होता है कि जब किसी मर्द के दिल में या लड़के के, मर्द को मैं लड़का ही बदल दूं क्योंकि हमारे कल्चर में अमूमन लड़के ही को सोचते हैं, तो जब किसी लड़के के दिल में किसी लड़की के बारे में ख्याल आए तो वो क्या करे, क्या हद है, सवाल पैदा होता है ना। देखिए शादी करनी है तो उसका मेयार अल्लाह के नबी ने बड़ा खूबसूरत दे दिया, चार चीजें गिनवा दी कि चार चीजों की वजह से औरतों से निकाह किया जाता है, लेकिन उसमें लिमा लिहा लिहा सबिहा ली जमा लिहा और ली दीनिहा, उसकी खूबसूरती, उसका माल, उसका खानदान, लेकिन दीन। और आपने कहा कि तुम दीन वाली से मुतासिर हो, जैसा लड़का होगा ना उसको वैसी लड़की पसंद आएगी, अत्तय्यिबात लित्तय्यिबीन الخبيثات للخبيثين, सूरत नूर में हम पढ़ेंगे। गंदी सोच वाले लड़कों से आप रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, करप्ट से करप्ट और वल्गर से वल्गर लड़के भी जिन लड़कियों को पैगामे मोहब्बत भेज रहे होते हैं ना, वो कहते हैं हम इनसे शादी नहीं करना चाहते, हम इनसे सिर्फ वक्त गुजारना चाहते हैं, सिर्फ इनको खेलना चाहते हैं, खेलो ना, भंवरे जो बना के दिखा दिए और तितलियां बन के लड़कियां जब फिरती हैं तो फिर मोहब्बतें तो ऐसी बढ़ेंगी ना। अगर आप इस्लाम का निजाम दुनिया को दे दें, आइडियल बिल्कुल, आप सोचें ये पूरा होटल है इसको आप इस्लाम कह दें, ये कमरा क्लासरूम है, वो उधर है, वो इधर है, और सब इधर आने वाले बिल्कुल शरीयत पे चल रहे हैं, इतना आसान है शादी करना और शादी होना, ये सारी खराबियां जो कुछ आज शादियों से पहले हमें बाहर गंदे तरीके से दिखती है ना, ये सब शौहर और बीवी की शादी के बाद उनकी जिंदगी का हुसन बढ़ाती हैं। मर्द के दिल में लड़के के बाद सिंपल लड़की से राब्ता करने की बजाय उसके बाप से करें। देखिए लिखे लव लेटर लिखना है ना तो लड़की को नहीं लिखो, उसके बाप को लिखो, सीधी सी बात है, आई एम नॉट जोकिंग, उसके बाप को, उसके भाई को लिखो कि आपकी बेटी, यानी मैं आपको तब बता रही हूं, वो मर्द जिसकी कोई मां बहन ना हो, हमारे कल्चर में तो चूंकि माँ बहनें ये करती हैं ना तो हमें अजीब लगता है, लेकिन बाज लोगों के हालात ऐसे नहीं होते कि उनका कोई और मर्द है, उसको खुद ही करनी है, किसी दीनदार के पास चला जाए, अगर वो दीनदार है कि मुझे शादी करनी है, मेरा ये क्राइटेरिया है, अगर कोई अच्छी बच्ची मिली तो बता दे, सिंपल बात। आप पढ़ के देखें जरा हिस्ट्री, आप कभी जिंदगी रखें, बस अल्लाह दुआ करे कि आप पढ़ेंगे जब मुहद्दिसीन और उलमाए कराम की महफिलें होती थी, 90% शादियां जो होती थी आपको पता है लड़कों की किससे होती थी, टीचर्स की बेटियों से। वजह क्या है कि वो इतने खूबसूरत नौजवान, इतने पढ़े लिखे, इल्म दोस्त होते थे, टीचर जाने देगा उसको बाहर कि भाई आओ मैं अपनी बेटी तुम्हें देता, और उनके लिए एक ऑनर होती थी कि मैं अपने उस्ताद की बेटी से शादी करूं और उस्ताद मेरा शौहर मेरा ससुर बन जाए, मेयार फर्क थे, दीन था, तो दीनदार है तो वो दीनदारों पे जाएगा, ये तो आम हालात की बात है। अब किसी को लड़की पसंद आ गई है, अब क्या करेंगे आप, उसको पैगाम देंगे, उसको ना बताएं, उसके बाप को बताएं कि मुझे आपकी बेटी अच्छी लगती है, क्या मैं उसे निकाह कर लूं, और बेटों में भी वो फिल्मी गैरत नहीं होनी चाहिए कि अब ये निकाह नहीं हो सकता और ये नहीं हो, पहले खुले आम छोड़ देते हैं बेटियों को गाय भैंसों की तरह, पता ही नहीं, उनके गले में तो फिर डोरी डाली होती है, बेटियों के गले में तो वो भी नहीं डलती, तो जब बाहर खूब मिले करें जो भी, और जब किसी का पैगाम आता है तो कहते हैं बस अब तुम्हें कत्ल कर दूंगा और तुम्हें ज़िबा कर दूंगा, गलत बात है, बिल्कुल अननेचुरल जुल्म हो रहा है। हम यकीन करें हालात आज जिनसे गुजर रहे हैं, मैं कह सकती हूं कि हमारे बच्चे बहुत दुखी है, मजलूम है, और इन फितनों के दौर में वही बचेगा जिसने बड़ा ही सब्र किया होगा, या फिर अल्लाह का डर है या कोई और मुआशरे का डर है। मर्द को कोई लगता है वो कहता है कि ठीक है मुझे करनी है, बाप कह देता है ठीक है इट्स फाइन, ठीक ठीक है, वो भी तो देखेगा ना कि ये कहने वाला कौन है, भाई है, बाप नहीं है तो भाई ऑफ कोर्स जो उसका महरम है। अगर उनको ओके, सरेआम जाके दीनदार के साथ किसी के मौलवी या किसी बाप से ही कह दो निकाह पढ़ा दो, 2 दिन में शादी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। बाप कहता है नहीं मुझे तुम पसंद नहीं या मैं नहीं कर सकता, तो उसके बाद एक बड़ी सी छुरी लेके ना, तो वो अपनी उस ख्वाहिश के ऊपर जिबा कर दो उसको। ये है मर्द के लिए हुक्म, किसी बाप और भाई से पूछे बगैर किसी की बहन या बेटी से राहो रसम बढ़ाना, ये जुर्मे अजीम है, ये जिना है। कबूल करती हैं? अगर आप लड़की हैं ना, मेरी बात तो आप ही सुन रही है ना, अगर आपको कोई फूल फेंके ना, तो वो फूल जाके अब्बू को दे देना कि अब्बू ये फूल आए, आप प्लीज जरा चेक कर ले किसने दिए। आई एम सीरियस, अब्बू को बताएं कि अब्बू ये फलां लड़का मुझे पैगाम देता है, जरा बात करें इसके अब्बू से जाके। और अगर आपको भी कोई अच्छा लगता है ना, तो आप भी यही कर सकते हैं। कोई तरीका नहीं है इसमें तीसरा, कि किसी की बहन बेटी से राहो रसम फोन पे चैटिंग पे। अल्लाह की कसम खाती हूं मैं आपको, इधर बैठे हुए मुझे शिद्दत अच्छी नहीं लगती अपने अंदाज में, लेकिन ये जिना के दरवाजे हैं जो हमारे हाथों में पड़े हुए इस वक्त। जाहरी बात है भाई, एक भूख है, खाना ही कोई नहीं, सब्र कर लेगा ना। और भूखे के हाथ में बिरयानी की प्लेट दे दे और कहना खाना नहीं, खुशबू उसका दिमाग खराब कर रही है। आज जो वे ऑफ लिविंग और जो तरबियत के अंदाज है, मैं तो कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें औलाद नहीं दी। वल्लाही मिंबर पे बैठ के कह रही हूँ, क्यों जो फितने हैं यार, आई गिव अप, आई कैंट। ये अल्लाह का तकवा होगा तो बच्चे सही होंगे, बता ही सकती हूँ। सच्ची जो बात है, जो फितने, जो हालात है। अगर आप कहते हैं कि आपके बच्चे अप टू डेटेड रहे, फोन भी उनके पास, आईफोन भी उनके पास, आईपैड भी उनके पास कोई और भी तरीका है, कोई एक सिम एक की, दूसरे की, चौथे की, ये वल्लाह ही आपने खुद उनके हाथों में अंगारे दिए हैं। हाँ उनकी तरबियत अच्छी की हुई है तो ऑफकोर्स ये जरूरत है। यही फर्क, यही आज समझाया जा रहा है। ये फोन मेरे भी तो आगे रखे ही हुए ना, अब ये फोन है आपके मेरे वाले हमारे में से 98% के पास यही फोन होंगे इधर, इसका इस्तेमाल क्या है? बस ये देख लीजिए, अब आपके अच्छा बच्चों के फोन हटा ले, फिर वो अकेले जाते हैं, फिर पता। मैं नहीं कह रही कि उनके फोन हटाएं, लेकिन मैं ये चाहती हूं कि उनको पहले इस दीन की समझ दें। एक आइडियल सोसाइटी में ये फितरतन लेते हैं सोसाइटी के दबाव से, ये आइडियल माँ बाप होते ही नहीं कि 17, 16, 15 या टीन एज ही चले कहले शुरू होने तक बेटा बेटी कुरान न पढ़े हो, उनके अंदर ईमान मोहब्बत ना आई हो। 16, 17 साल के लड़कों ने अबू जहल को कत्ल किया था, माँ ने कहा बता कि ये मोहम्मद सल्लम को गाली देता है। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का था, सिंध फतह कर दिया, क्योंकि आप बताइए अगर माँ ने उसको ये तरबियत ना दी होती, यकीन करें माए जेब में पैसे डाल के फिरती थी कि कहाँ कोई दीनदार आलिम है वो इनको कबूल कर ले। आपने इमाम रबी का वाक्या सुना होगा 20 बार, जो उनके बाप बचपन में, ये भी छोटे थे तो उनके बाप जो थे वो किसी जगह चले गए, कभी बाप जिहाद पे चले जाते थे उस दौर में, कभी खुद दीन सीखने चले जाते थे, कोई भी काम था, और जाते जाते कुछ एक थैली थी अशरफियों की या जो भी माल होगा बीवी को दे गए और बेटा था साथ, छोड़ के चले गए। कितने साल, शायद 17, 18 साल वो ना आए वापस, वो औरतें भी कैसी सबर वालियां थी। बहरहाल उसके बाद वापस आए, आने से पहले रास्ते में मस्जिद थी वहां नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ी तो वहां बहुत ही खूबसूरत सा एक जवान था और वो दर्स दे रहा था, नमाज पढ़ रहा था। उसको देख के कहते हैं कितना खुशकिस्मत बापू माँ बाप होंगे, ये जो बच्चा किसका है। खैर वापस आए, दरवाजा नॉक किया, बीवी घर थी, पहचान गई, आप किधर आप कहाँ। खैर कोई इस तरह के लंबे चौड़े खाते नहीं होते थे उस दौर में जो आज के शिकवे शिकायतें हैं। कहने लगे कि बेटा किधर है, कहा वो बाहर गया हुआ है। कहा अच्छा ठीक है, वो पैसे किधर है, वो जो तुम्हें दे गया था। देखिए मर्द इतने साल भी बाद आप भी आए ना तो हिसाब मांग रहा है। कहा वो पैसे किधर है, कहा कि अभी देती हूँ आपको, अभी बता, उसका हिसाब देती हूँ आपको ना। ये बातें कह रहे थे ना तो दरवाजा नॉक हुआ, तो बाहर से एक बड़ा खूबसूरत जो भी सुन्नत चेहरे का बच्चा था लड़का, वो अंदर आया। तो वो वही बच्चा था जिसको मस्जिद में नमाज पढ़ता पढ़ाता देखा। तो माँ ने कहा कि ये तुम्हारा बेटा है और जो पैसे तुम देके गए थे वो मैंने इसकी तालीम पे लगाए हैं। और ये कोई हैरत की बात नहीं है, हम भी एक यूनिवर्सिटी का खर्चा साल का निकालें तो कई अशरफियां बनती हैं। कोई हम तो नहीं, ये तो नहीं है कि हम नहीं लगाते, सब लगाते। सर जी हाथ बदल गई तो बात जो है आगे चली जाती है। जुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहावाति मिनन निसा वल बनीन, ये बनीन साथ आ गए, ये नेमते हैं अल्लाह की, हमने इनको कैश कराना है। मैं कहती हूँ किसी के पास एक पाउंड भी जेब में ना ना, आपके पर्स में एक पाउंड भी ना हो आपकी जेब में, लेकिन अल्लाह ने आपको एक नेक बेटा दिया हुआ है, जो आपको एक नेक, सिर्फ एक, दो नहीं, एक बेटा या एक बेटी या एक बेटा एक बेटी या व्हाट एवर, तो आप दुनिया उनसे पूछिए। मैं कहती हूं कि हम आज अपने माँ बाप के लिए क्या हैं, नासूर, कब्रों में उनके सांप और बिच्छू जाते हैं हमारे करतूतों की वजह से, या हमारी वजह से कोई खैर जाती है? आप सोचिए, आप तो बच्चियां अच्छी हैं तभी तो कुरान पढ़ रही हैं ना। हमारी सोसाइटी की 98% बच्चियां और बच्चे आज इस वक्त किधर है, और कितनी हमारी वो जिसको कहना चाहिए कि हमारे इस क्या कहते हैं इसको, नस फटकती है ना जो बहुत दुखी होते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, रग, यानी कितनी हमारी रग फटकती है उनके दीन के लिए। कहते तो हैं हम, तड़प तो कोई नहीं। मैं तो कह सकती हूं कि मैं अगर मेरे बच्चे हों तो मेरे से ज्यादा शायद जालिम ही कोई ना माँ होती। मैंने तो नहीं खाना देना था अपने बच्चे को अगर वो फजर पे ना उठ। हमारा हाल है, हम बातें भी कर देते हैं फिर उनके मुंह में ठोसते भी हैं, चलो खा लो मेरा बच्चा, जाने दें इनको बगैर स्वेटरों के, जाने दें बगैर खाने के, नमाज नहीं पढ़ते तो ये आपके लिए जहन्नम का ईंधन बनेंगे, अल्लाह ना करे। अगर आपने इनको नहीं सही समझाया, इस्लाम इस पे बहुत बेलाग है, क्योंकि ये आपकी आखिरत की करेंसी है। देखिए आपके पास असली डॉलर है ना, मैं अमेरिका से आई, मैं असली डॉलर लेके आई, मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं इसको पाउंड में भी बदल लूंगी, मैं क्रोन में भी बदल लूंगी, मैं रुपीस में भी बदल लूंगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मेरा डॉलर ही नकली होगा तो किस मुल्क में इसको एक्सेप्ट करेंगे, किस मुल्क में मैं धोखा दे के उसको चेंज कराऊंगी? तो आपका बच्चा आपका डॉलर है, करेंसी है ये, अल्लाह ने इसलिए रखी कि इनको जाओ कैश कराओ, ये आंखों की ठंडक है कर रहे। अल्लाह सुब्हान तआला कहता है कि देखो, सोचो, गौर करो, आज इस दुनिया ने और इस पेट के मसले ने हमें इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि हम इस पे बहुत रिलैक्स हैं कि हमारे बच्चे अपने कैरियर बना रहे हैं। देखिए मैं आपको सच कहूं, ये मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही, कड़वी तो है, बुरी ना मानी, बुरा ना माने, इसलिए कि ये हम कुरान पढ़ने वालों में अगर ये रूह नहीं पैदा होगी तो बाहर वालों में नहीं होगी। अगर आपकी मेरी बेटी हमसे इजाजत मांगे कि मैं डेट पे जाऊं तो हम जाने देंगे? कोई एक आप में से लिबरल भी नहीं जाने देगा ना? मैं अपने फ्रेंड को मिलने जा रही हूं, जाने देंगे? नहीं जाने देंगे ना? और भी कोई खराब चीज दो चार जहन में लगा लीजिए, वो कहे कि मैं शराब पी लूं, पीने देंगे? सोच भी नहीं कि हमें अपने कैरियर बनाना है, हमें जॉब करनी है या हमें पढ़ना है, पढ़ने लिखने के लिए हम भेजते हैं ना, जरूरत के लिए भेजते हैं ना, कि भाई एक फीस जमाना है, एक जरूरत है, एक हमारे बच्चों की, एक हमारी, ये दिस एंड दैट। अब आप इसको एक साइड पे कर ले, आप देखिए हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये याद रखिए। इस वक्त उम्मते मुस्लिमा को ओवरऑल आप देखेंगे ना, तो जो इस वक्त हमारे माँ बाप वाली जनरेशन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, जो उससे अगली यंग्स वाली जनरेशन है वो ज्यादा बेहतर है, इल्ला माशाल्लाह, एक्सेप्शंस हर जगह। और वजह पता क्या है कि जो जनरेशन इस वक्त पेरेंट्स के रूप में है ना, यानी 40s 50s में जो माँ बाप है, उनको सिर्फ कुरान मिला, कुरान का तर्जुमा नहीं मिला, नमाज पढ़ो, उठो नमाज पढ़ो, आपके अब्बा अम्मा यही डांटा डांटी थी ना, उठो नमाज पढ़ो, फजर के बाद नहीं सोते ना, कानों में दादू नाना की आवाजें हैं। यकीन करें सिर्फ इसलिए हमें नानी के घर जाना मुश्किल लगता था छुट्टियों में, कि नाना अबू ने फजर के बाद सोने नहीं देना, ना सोते थे ना सोने देते थे, कहीं खिड़कियां खुल रही हैं, कहीं पंखे लग रहे हैं, कहीं एसी बंद हो रहे हैं, कहीं चादर, सवाल ही नहीं कोई सो सके। हमारे बूढ़े नाना थे, अल्लाह उनको जन्नत दे, शायद 80s में जाके दुनिया से गए हैं, हमने जब से आंख खोली यही देखा है कि नमाज के लिए फजर पे जाते थे पैदल, और फिर जब वापस आते थे तो तकरीबन 8-9 यानी 2-2.5 घंटे बताते थे क्या, पहले मस्जिद में गए, जो भी हुआ नमाज जो भी पढ़ी, फिर फर्ज पढ़े, फिर उसके बाद वहां जिक्र अस्कार सूरज चढ़ने तक नमाज मस्जिद में रहते थे, वहां फिर अपनी इशराक पढ़ के फिर वापस घूम के बाग का चक्कर यानी वॉक करके आते थे, और घर आने तक उनके लिए सेब और एक प्लेट में छुरी सेब काट के या कटा हुआ या बादाम, नानी ने हमारी नानी बादाम खोट खोट के ना बच्चों को पिलाया, आज भी याद है, सरदाई बोलते थे शायद उसको। रात को दबे दाम भिगो के उसको भिगोना, फिर उसको सुबह उठ के घोट के, तो बच्चों की सी रोटी छोटा सा फुलका होता है ना, एक फुलका खाना है, ना चिप्स ना बर्गर ना शामी ना फुला ना कुछ, आज तो 100 चीजें हमारे अपने आगे, हमारे बच्चों के आगे, तो सोचना कि हम किधर जा रहे हैं। आज हमने अपनी चीजों को इतना सजा लिया, आप देखिए ये सदफ जरा ये थैला मेरी हेल्प करें प्लीज, आप देखिए कि मेरी बातों को ना आप इस तरह ना सोचे कि मैं एक्सट्रीम पे जा रही हूँ, मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और हमारे मुसलमानों में इस वक्त बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे ऐसे भी नहीं है, लेकिन आज देखिए जिन चीजों में पढ़कर हमारी दुनिया गई, ये जो औरतें बाजारों में जानती हैं, कनातीर अल-मुकंतरत मिन अज़हबी वल फिद्दा वल खैल अल-मुसव्वमा, ये क्या कुछ होता है, ये आपके लिए कुछ सैंपल लेके आई हूँ, बड़े दिन से रोके हुए थे जरा चीजें, मैं अक्सर सोचती हूँ कि लोग बाजारों में जाते हैं तो करते क्या है भाई, आप कितनी कुछ चीजें लाएंगे और क्या कुछ करेंगे, तो आप देखिए कि जरा हमारे गम और हमारे हम देखिए, अच्छा जो मैं गलती करूं मुझे बता दीजिएगा, ये चम्मच किस लिए है आपको पता है तो आप बता रहे, ये सैलड के लिए, ये इसमें एक मेरे जैसा हो तो इसको फेंक देगा कि ये तो टूटा हुआ अंदर से, लेकिन मुझे पता चला कि ये चमचा सैलड निकालने के लिए, राइट ठीक है, इसको क्या हुआ गरीब को, ये देखिए ये किस लिए जी, एक कप के अंदर टंगने के लिए, यानी कि कप के अंदर इसको टूंग दें यूं, ठीक है ये यूं करते होंगे ना, इससे फायदा क्या होता है जी, आपको ज्यादा पता है बताइए, नहीं ये सिर्फ कप के अंदर, चलो इसका तो आपका बिल्म काफी है माशाल्लाह, अच्छा जी ये क्या है, कॉफी जो छोटे पूरा फुल कप नहीं डालनी, चम्मच छोटी चम्मच है तो उसके साइज की है, अच्छा जी ये क्या है, ये क्या है पेचकस, पिक्कल लेना हो तो फिर आप ये चम्मच लें, पिक्कल लेना है ना तो इसको लेना होगा, ठीक है अच्छा, साथ साथ ये भी बता दूं कहाँ कहाँ से मिलते हैं ताकि आप लोग भी ले आए, ये एडवर्टाइजमेंट हो रही है, अच्छा जी इसको क्या मसला, ये क्या जी, ये हनी लें तो उसको करके दिखाएं कैसे डालते हैं, देखा अब तो आसफा का भी आज शॉपिंग का रेट बढ़ गया, ये इसको जरा मरोड़ा ऐसे कि हाथ ना मोड़ना पड़े, चम्मच ही मुड़ जाए, आप इधर आ जाए सदर जो कह, एरम जो कहना है, अच्छा जी ये छोटा कंट है, ये तो कंट ही है ना, फोक है, इसके नीचे बीच में मैं ऑनलाइन वालों की भी मदद करूं कि इसके बीच में एक सुराख, चुप करें मैं समझाती हूँ आपको, आप देखिए कि वो जब पिकल्स वाला होता है ना, जैसे वो ऑलिव्स या जैसे अरबिक पिकल्स होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा पानी आ जाता है ना साथ, तो ये चमचा लें तो जब इसमें लेंगे तो उस सुराख में से पानी निकल जाएगा तो पिकल ऊपर है। कितने मसलों का हल है माशाल्लाह। ये काफी लंबा है, ये लंबे कप में जब चाय पीनी हो तो उसको अंदर स्टर करने। सच? हाँ हाँ यही वजह है, राइट। अच्छा जी, ये क्या चीज है जी? ये देख लें, ये बता दें। इतनी बदगुमानी आपको सदफ से? नॉर्मल स्पून है ये, सूप पीने वाला चम्मच है ये, सूप, ये सबको हमें पता है ये सूप वाला है ये, क्योंकि सबके घर में जो है इसलिए ठीक है। अच्छा जी, ये आइसक्रीम खाने वाला होगा, ठीक है, ये आइसक्रीम वाला। इसको सुराख क्यों हो गए इतने? ये देखिए, ये अचार निकालने वाला चमचा है कि जब उसमें से इसमें डालेंगे तो इन सुराखों में से अचार जो है वो निकल जाएगा, तेल निकल जाएगा और अचार, आप मोटे नहीं होंगे माशाल्लाह, फिर लोग मोटे नहीं होते, राइट। ठीक है जी। अच्छा ये वही है पिकल्स है, छह होंगे। अच्छा जी, ये क्या है?
ये जो छोटे फोक्स होते हैं ये वो केक फोक्स
है। ये केक फोक्स है भाई, माशाल्लाह। और भी है कुछ इसमें भी कुछ है? अब आप मुझे बताएं कि ये जी सदफ, आप कुछ कह, ये रम आप कुछ कह रहे हैं? ये रम छोटी से भी लाए थे ना, ग्रीन से जो थे, हाँ मैंने रखे थे ना वो भी। आपको पता है कि जैसे ये इरम जो बता रही है कि चमचों का काम दिया, तो उस दिन हमारी एक सिस्टर मैनचेस्टर से भी आई हुई थी, तो मुझे अगले दिन उन्होंने बताया कि मैंने अगला दिन लगा के अपने मियाँ को साथ लगाया है और चम्मच गिने हैं, तो पता नहीं मुझे, अगर वो सुन रही है तो लिख दें कितने आए थे। काफी ज्यादा मेरे लिए 58 या कुछ 50-60s में चम्मच सिर्फ खाने वाले जो सालन चावल खाने वाले वो निकल आए हैं घर से अभी। अभी कह रही हम स्टिल वी आर गिन रहे अभी। ये क्या है? ये वो, ये देखिए अभी तो और बड़ा कुछ निकलेगा। हाँ ये देखें जी, ये भी एक अदा है, देखें आपको बाद में बता देंगे कहाँ से मिलती हैं, आप क्यों परेशान हैं। अच्छा जी, ये करें, इसको करते, ये देख रहे हैं आप चम्मच प्लास्टिक ग्रीन और ब्लू से है, पीछे फिश बनी हुई, आगे सुराग। ये क्या है? ये भी पिकल उठाने का? ये क्या है, इसको क्या करते हैं? कॉकटेल के लिए। अब आप देखिए जी, जज़ाकअल्लाह खैर। और कुछ है तो दिखा दो, नहीं तो अब आप मुझे बताइए कि ये मैं ये आपको दिखाने का मकसद क्या है, पहले मकसद बताएं। कुछ है तो दिखा दो फटाफट। अच्छा अभी तो और भी चीजें हैं। ये क्या जी? ये पिंक कलर का कुछ है, इसको एक्सप्लेन करें। आइसक्रीम डाल के ना उसमें, तो फिर इसको पुश करते हैं, करके दिखाएं।
ये इस तरह से है ना, आइसक्रीम में रख के ये
वो एक कबाब वाला भी तो था ना, एक बर्गर वाला वो भी है, वो अलग है। ये देखिए जी, ये बर्गर बनाने वाले हैं, जिसको चाहिए हो मेरे से रब्ता करें अब इन चीजों के। ये इसमें रख के तो फिर क्या करते हैं इसको, इसमें तरीका भी बता दें। ये क्या था, आपने मुझे कुछ इसका समझाया था? استغفر اللہ. یہ کیا
یہ جیسے ہم لوگ سرونگ کرتے ہیں پلیٹس کی, تو جیسے چاولوں کی اور وہ چیزیں اسٹیک پڑی ہوئی ہے,
اسٹیکر ہے یعنی اس میں چاول ڈال کے تو پلیٹ میں رکھیں گے تو کھل جائے گا. چلیں یہ انڈوں والا بھی دکھا دیں. یعنی آپ نے آج تک انڈا اوول کھایا ہے نا, تو اگر آپ کا دل چاہے چکور انڈا کھانا ہے تو اس میں ڈال کے آپ انڈے کو نکالیں گے تو وہ
جب انڈا بوائل کرتے ہیں تو اس کو ابھی وہ گرم ہو اس میں ڈال کے یہ اسکوائر شیپ بنی ہوئی ہے اس کو ٹائٹ بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں تو وہ اسکوائر شیپ
بدھی چلے لائیں سب سپارا لائیں سبق سبق سنتے ہیں ذرا ان سے کل کا سب کے سامنے ذرا سبق سنیں. چلیں اس کو دے آجو. جی آپ میں سے کوئی اپنا کچھ کہنا چاہتا ہے یہ باتیں سننے کے بعد کیا سوچ رہے ہیں؟ جی آپ سمینا جی ایک منٹ جی. اب دیکھیے کہ دل توجہ سوچ, اب مجھے پہلے تو بتائیں کہ میرے جیسا بندہ تو یاد بھی نہیں رکھ سکتا اور کتنی نافرمانیاں کرتا ہے بندہ کھول کے کہ دیکھو اگر میں غلط چمچ سے کچھ کھا لوں تو مجھے معاف کرنا. یہ تو ایک جرم ہو گیا نا, شریعت کی نافرمانی ہو گئی کہ یہ چمچ تھا تو اس کے لیے اور میں نے اس کے لیے یوز کر لیا. جی آپ ارم ٹائم ورک ایفرٹ سو, اور یہ کوئی ایسی تھوڑی آ گئی ہیں, اس کا کہ ابھی آپ لوگوں کا آپ کا دل نہیں بدلا ابھی پورا. جی اور کوئی کیا سوچ رہی تھی مائدہ؟ جی اتنوں کو سنبھالنا بھی تو مشکل ہے نا. جی آپ کہیے. آپ کو پتہ ہے میں کس کا جملہ, یہ بڑا معروف کردار ہے کوئی سائنٹسٹ تھا, نیوٹن وغیرہ تو نہیں, وہ تو زیادہ دور کی بات ہے, یہ قریب کے دور کا ایک جملہ میں نے کسی کے بارے میں سنا. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ جو شیمپو اور شاور جل اس کا فرق نہیں پتا چلتا, نہ میرے پاس اتنا وقت ہے, میں باتھ روم میں جاتا ہوں ایک ہی چیز سے دونوں کام کر کے باہر آ جاتا ہوں, اور آج تک مجھے فرق سمجھ آیا بھی کوئی نہیں کہ شیمپو میں اور چار چیزیں کچن کی ہیں نا. آپ ذرا آج ایک کسی بھی سوچ سے باتھ روم کے سامان کو دیکھیں, گھر کے دیکھیں, کب اتنی مختلف چیزیں ہمارے پاس, اور اس کی وجہ سے بات یہ ہے کہ کل انبیوکم بخیر من ذالکم, آؤ تمہیں اس سے زیادہ نکال. اب ان چیزوں سے دل کب بھرتا ہے؟ اب جن کی بھی یہ ہیں جو بھی ساتھی ہیں, آپ بتائیے کہ اگر یہ چیزیں ساری ایک سائڈ پہ ہوں اور اسی کو خریدنا بنانا کتنا جہاد ہوتا ہے نا, خریدو ڈھونڈو پیسہ لگتا ہے, پھر اس کو سنبھالنا, پھر سوچ, پھر ظاہر ہے کہ دیکھیں میرے پاس تو اتنی چیزیں ہوں گی تو میرا دل کرے گا نا کہ میں لوگوں کو جب سرو کروں تو یہ یوز بھی کروں, رکھنے کے لیے تو نہیں ہوں گی, پھر میں اس میں سوچ میں ہوں گی, پھر اس میں میرے دل میں یہ بھی خیال آئے گا یہ میں نے کیوں بنائی. سچ بتائیں کہ یہ ان چیزوں کے بغیر گزارا ہو رہا ہے آپ کا میرا؟ ہم پھر اس طرح سے سوچتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی چیز اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں سیلف پروجیکشن ہوتی ہے. جی سمینا جی آپ کچھ کہنا؟ بالکل لالچ ہے, اور پھر بروشرز دیکھنے, نیٹ سے چیک کرنا, سیل دیکھنی, کہاں کیا نئی چیز آئی ہے. ظاہری بات ہے آپ جب ایک نئی ایک چیز لیتے ہیں تو اس سے اگلی چیز بھی تو لینا چاہتے ہیں. یہ لیں آپ کچھ کہنا.
میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ الحمد للہ بہت ساری چیزیں ہیں میرے پاس بھی گھر میں, اور میں نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کبھی استعمال نہیں کی, اور جب کبھی دعوتیں ہوتی ہیں الحمد للہ ہم بہت چیزیں استعمال کرتے بھی ہیں, اور لیکن کچھ چیزیں اکثر چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں کہ جو نکالنے اور پھر بعد میں سنبھالنے کے ہاتھوں وہ پڑی رہتی ہیں, اور آبویسلی یہ چیزیں جگہ بھی لیتی ہیں اور پیسہ بھی لیتی ہیں اور برڈن بھی ہے. میں ہمیشہ یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ میرے نفس کو ختم کر دے یہ خواہشات کے, तो मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा ऐसा इसका हो रहा है। तो इंशाल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि हम सब पे इसका फर्क पड़े।
असल पता क्या कि जब हमने आगे कुछ देखा नहीं होता ना, तो फिर हमें ये चीजें बहुत बड़ी लगती हैं। आप पाकिस्तान के किसी छोटे से बाजार में चले जाते हैं तो आपको वहां पड़ी हुई चीजें भी अच्छी लगती हैं, 10-10, 20-20 रुपए की। फिर आप एक चक्कर बाहर का लगाते हैं, या लाहौर लिबर्टी चले गए, डिफेंस चले गए, जहां भी, तो आप वहां की एक दुकान देख लेते हैं तो आपको अपनी गली की दुकान की चीजें अच्छी नहीं लगती। बाहर के मुल्कों में आ जाते हैं तो अब हमारी जुबानों पे क्या होता है, हमें पाकिस्तान के जूते अच्छे नहीं लगते, हमें उनके सॉक्स नहीं अच्छे लगते, सारी जिंदगी वहीं के पहनते आए हमें ये। गर्म चाहिए, ये सर्द चाहिए, नरम चाहिए, है कि नहीं? इन्ना लिल्लाह। देखिए, मैं तो नहीं, ये और खास तौर पे हमारे मुल्कों में भी जो इन चीजों में पड़ता है, और 90% के पास हो सकता है पानी नहीं, पीने को नहीं, खाने को नहीं, ये चीजें हैं ना। आज क्यों हमारी मस्जिदें टूटी हुई, आज क्यों नहीं, क्या हम ये सब कुछ नहीं कर सकते? हम क्यों इन चीजों पे? और याद रखें कि अगर एक सादा चम्मच 1 पाउंड का ना, तो कम अज कम ऐसा एक चम्मच 5 पाउंड का होगा, शौक का मोल है। आज इसमें तो कोई बच्चों वाली नहीं निकली, आप, मैं बच्चों की चम्मच देख के बड़ी हैरान होती हूँ। अक्सर माएं बच्चों को खाना खिलाती है ना, तो इसको क्या कहती है, ये टेढ़ी है, इसको सीधा करना पड़ता है। ये सिर्फ बच्चे की चम्मच होने की वजह से वो प्लास्टिक की चम्मच 3 गुना महंगी होगी आम चम्मच से, क्योंकि लोगों को पता है कि इसने माँ ने अपने बच्चों के शौक के लिए ले लेनी है, पता नहीं है। लेकिन इसमें खो के नहीं रहना, इन चीजों में तवज्जो जब आती है ना, तो फिर बंदे का दूसरी चीजों से दिल चला जाता है। और सच्ची बात है, मैंने अपनी जिंदगी में जिस चीज को बहुत ज्यादा महसूस किया है, वो तौहीद है। आप कहते हैं तौहीद क्या, आके देख लें, आपके जो चीज एक है ना, आप मुतमईन है। मसलन आप देखिए कि अगर आपके पास, मिसाल दे देती हूं कि आपके पास एक कमरा है घर में जिसमें आपकी चीजें हैं, जो है उसी में ही है ना। एक दो कमरे आप कहते हैं, एक ऊपर कमरा बना लेते हैं, एक नीचे बना लेते हैं, ज्यादा वक्त आप क्या करते रहते हैं, वो उधर ये इधर है। बैग मुझे सबसे ज्यादा इजी बैग लगता है। आप लोग को गौर कभी करे ना करे, मैंने जिधर भी जाना मैंने हमेशा एक ही बैग लगाया होता है। वजह पता क्या है, कभी दूसरा कोई नया बैग जब लगाती हूँ और उससे यूज टू होने के दौरान नया पुराना यूज करूँ ना, अरे वो चीज उधर थी, वो उसमें थी। कहीं जाने से पहले उसको खाली करो, उसको छोड़ो, उसको करो, और जो चीज चाहिए होती है ना, वो दूसरे बैग में होती है। मैं सोचती हूँ तौहीद अच्छी है, एक बैग, एक चीज जब आप अपनी जरूरत की रखते हैं ना, आप पुरसकून है। इस्लाम ये नहीं कहता आप गंदे बर्तनों में खाएं, खराब में खाएं। मैं अपने तौर पे क्या सोचती हूँ, जैसे हम लोग घर अमेरिका में बहुत स्मूथ जिंदगी बसर हुई घर तो एक ही था, अलग बात ही ट्रेवलिंग करते थे। मुझे क्या अच्छा लगता था, ग्रोसरी स्टोर्स में बर्तन भी होते हैं ना, मैं क्या करती थी कि कोई एक बड़ी प्लेट, हम छोटी प्लेट में नहीं खाते, बड़ी में खाते हैं, उसी में सबको डाल के एक ही प्लेट सामने रखी है। अच्छा अब क्या होना कि एक प्लेट खरीदनी, अब वो $1, $2, 1.5, जिस तरह छोटी मोटी उसी के मैचिंग का एक मग, यानी हमारा डिनर पूरा हो जाता था जब एक प्लेट एक बोल ले लें और साथ उसके कोई भी छोटी प्लेट ले ली। ये मेरा डिनर था, मैंने एक खरीद लेना। अब जैसे खरीदा, अब उसमें खाना शुरू कर दिया, महीना दो तीन चार महीने, यानी हम एक वो चम आ गई ना एक ऑल्टरनेट पे, 2-3 महीने बाद फिर दिल चाहना ना तो एक और ऐसा ही डिनर खरीद लेना, कोई नया रंग कोई नया डिजाइन। अब क्या होता है, आपके पास ये चीज आ गई, उस को उठा के किसी को गिफ्ट दे दे, आप दूसरे में शुरू कर। ये नहीं मैं कह रही कि मेरे घर में सिर्फ एक ही प्लेट थी या एक ही रंग की, लेकिन मुझे सुकून लगता था कि मेरे पास एक, सिर्फ आप जाके अपने घर की वो अलमारियां देखें जो यूज नहीं होती। मैंने कल परसों आपसे बात करी थी वाले कि देखें हम जिन बर्तनों में रोज खाना खा रहे हैं ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो अगर कि वो ऊपर जो पड़ा हुआ है जो कभी नहीं इस्तेमाल हुआ, गड़बड़ है। मैंने इनसे कहा कि सदफ आप ऐसा करें कि जिस डिनर में हम खा रहे हैं ना, अब इसको अगर आप नहीं भी इसको पीछे कर दें तो आप जितने डिनर्स आपके पड़े हैं ना, हर डिनर में एक एक हफ्ता खाना खाएं, फिर दूसरे। एक तो बात है कि दिल का शौक भी तो पूरा हो, बाद में लोगों ने रोना है हाय खा नहीं सकी, पहन नहीं सकी, ओढ़ नहीं सकी, और दूसरी बात है हिसाब ना हो, जिसमें खा रहे हैं उसका कोई हिसाब नहीं। हदीस में अल्फाज मौजूद है कि जो खा लिया बाकी सब यकूल लब्दू माली माली, बंदा कहता रहता मेरा माल मेरा माल, लेकिन वो वरसा का है, लोगों ने ले जाना है हमारा माल, कोई रोएगा कोई खुश, कोई कहेगा शुक्र इस्तेमाल नहीं किया नया, और कोई अपना होगा तो रोएगा हाय बेचारों को इसमें खाना पीना ही नहीं हुआ। और सिर्फ बर्तनों की बात नहीं, ये एक पूरा लाइफस्टाइल है। कपड़े देख लें, इस्तेमाल करें, आपके इस बेडशीट से बिछाएं, मत किसी आस में रखें कि कोई एमएनए आपके घर आएगा तो उस दिन आप ये नई चीजें बिछाएंगे, इस्तेमाल करते रहे, थोड़ी सी अच्छी इस्तेमाल हो गई, दिल में खुशी हो गई, बजाय इसके कि वो चीथड़ा बन जाए और नुच पुच जाए, रंग उड़ जाए, फिर किसी को दें, क्या हम अच्छा नहीं दे सकते। आपने एक मारूफ जुमला अपनी सिस्टर से सुना होगा, अपने मुल्कों में रहते हुए कोई देने भी लगे ना बेटी के ये जोड़ा दे दो, तो माँ कहते ये तो भी अच्छा भला, ये सुना मैं अभी से दे रहे हो ये तो भी ठीक है, मतलब किसी को देने से पहले इसका खराब होना लाजमी है। आप पाकिस्तान जाते हैं ना, आपकी मेरी बहनें भाई वहां हैं, उनके पास भी बहुत है, लेकिन चेंज अच्छी लगती है, आप अपनी जो चीजें पहन चुके हैं अलग धो बता दें कि ये मैंने पहनी, अब तुम शौक पूरा कर लो उसके, ले लो। मैं तो अपनी अम्मी के बहनों के कपड़े ले आती हूँ पहनने में, मुझे इतने अच्छे लगते हैं पहनने में, नरम लगते हैं, मैं जितने कपड़े पहनती हूँ बहुत सारे मेरे किसी और के होते हैं, मुझे अच्छे सुकून लगते हैं अपने, मैं उनको दे देती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए भी नए उनके लिए भी नए। जी आप में जी आप सच कहती हैं, कहती हैं कि बड़ी का बड़ा जोड़ा बनता था तो वही छोटे होते थे तो छोटे पहनते थे, आज इसका तस्वुर है हमारे घरों में, बल्कि जोड़ा बनता था छोटी खुश हो रही होती थी, कोई बात नहीं कुछ अरसे बाद मुझे मिल जाना है। अल्लाह अकबर, बस ये बातें तो फिर बहुत ही लंबी भी होती हैं, लेकिन इस पे गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी नजर ऊपर डाली है कि कुल अउनबियुकुम बिखैरि मिन जालिकुम, क्या मैं तुम्हें इससे अच्छा ना बताऊं। देखिए ये है असल तरीका, आप कहते हैं सिस्टर्स के दिल से इसको कैसे निकाल लें, फ्रेंड्स को क्या बताएं, उनको इससे अच्छा दे दें, ऑल्टरनेट दे दें, जब जन्नत की नेमतें हमारे सामने आएंगी तो खुद ब खुद आप देखेंगे कि इन चीजों के ऊपर हमारा दिल बहुत ज्यादा खुल जाएगा, हमें ऐसे नहीं लगता कि ये बस ऐसी चीजें हैं, नहीं ये चली गई तो पता नहीं क्या होगा, इससे भी अच्छी चीज मार्केट में आ जाएगी, आपको और भी मिल जाएगा, और खास तौर पर अगर जन्नत की चीजें होंगी तो कहा कि फिर उसके ऊपर नजर रखो, बिखैरि मिन जालिकुम, इसको बड़ा बड़ा लिखे आप इस आयत को, ये जो भी मैं आपको बताने लगी हूँ इसको आप अपने हाथ से लिखें, खूबसूरत साइज का एक छोटा सा ऐसा स्टिकर टाइप बना ले,